ओम शांति। बहुत बाबत से प्यार का गीत सुन रहे थे। तुम ही हो सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे बाबा हमारे। तो सचमुच संगम युग पर बाबा सर्व संबंधों से हमारे साथी बनते हैं और हम बाबा से उस स्नेह का अनुभव भी करते हैं, करते हैं सभी। तो हम सब कहते हैं ना, हम सहज योगी हैं। तो योग का अर्थ ही क्या है? संबंध। और राजयोग कहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ संबंध और सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध। तो सबसे बड़ी बात कि हमारा संबंधी कौन है? स्वयं भगवान। दुनिया में भी किसी का किसी ऊंचे व्यक्ति के साथ संबंध होता है ना, तो थोड़ा नशा होता है उनको इस बात का कि देखो मेरा दोस्त या मेरे पिता वो इतने ऊंचे पद पर हैं। तो भगवान से संबंध है। दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो विश्व का मालिक है, उससे हमारा संबंध है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए हमें। और जब हम बाबा के पास आते हैं तो उस ईश्वरीय स्नेह का अनुभव भी हम करते हैं। देखो भगवान के प्यार ने ही ब्राह्मण बनाया है। शुरू शुरू में आते हैं तब पुरुषार्थ करना है, मनुष्य से देवता बनना है, इतना सब ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो ईश्वरीय प्यार मिलता है, रूहानी स्नेह मिलता है, निस्वार्थ स्नेह मिलता है, शांति मिलती है, वो हमें आकर्षित करती है। और शुरू में हम उस नशे खुशी में उड़ते भी रहते हैं। बाद में फिर कई बार ऐसा अनुभव करते हैं कि बाबा से योग में जो प्यार का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं, क्योंकि बाबा सदा न्यारा है। तो हमें भी उस प्यार का अनुभव करने के लिए देह से न्यारा होना पड़ेगा। तो जो न्यारा है वही बाप का प्यारा हो सकता है। तो देह सहित देह के सभी संबंधों से न्यारा होकर मुझे याद करो, ऐसे बाबा कहते हैं। तो कई बार हम देह से न्यारा होना भूल जाते हैं। जैसे भक्ति में भक्तों को आदत होती है ना, देह समझकर भक्ति करते हैं भगवान की। तो कई बार वही संस्कार हमारे योग में भी इमर्ज हो जाते हैं और वो आत्मिक स्वरूप अव्यक्त स्थिति से बाबा को याद करना, देह से न्यारा होकर के बाबा से संबंध का अनुभव करना, वो जब हम नहीं करते तो बाबा के उस प्यार का अनुभव भी फिर हमें नहीं होता है। तो संबंध से स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, प्राप्तियां होती है। इसीलिए दुनिया में भी लोग संबंधों में रहते हैं। हम समाज में रहते हैं, क्यों रहते हैं? तो बाबा से भी हमें ये सब प्राप्तियां होती हैं। सहयोग मिलता है समय पर, जिस संबंध से बाबा को याद करो, मदद अनुभव होती है। क्या कहेंगे? होती है, सभी का अनुभव है। तो ऐसे हमारे जीवन के भी अनुभव हैं। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पिछले साल हम गए थे राउरकेला, कुछ सेवा का कार्यक्रम था वहां पर। और जब वापस लौटे तो क्योंकि वो काफी डिस्टेंस है यहाँ से, तो फ्लाइट से हम वापस आ रहे थे। रांची से वाया कलकत्ता अहमदाबाद से फ्लाइट थी, तो सब बोर्डिंग पास वगैरह फ्लाइट में वो बोर्डिंग पास देते हैं तो लेकर के, और जिस गेट पर फ्लाइट लगनी थी वहां जाकर बैठे थे। हमारे साथ एक और थे। लेकिन हुआ ये कि फ्लाइट का गेट चेंज हो गया और वो अनाउंसमेंट अगर हुआ तो हमें हमने सुना नहीं, या कई बार वो अनाउंसमेंट नहीं करते, मैसेज देते हैं, तो यानी हमें नहीं पता चला कि फ्लाइट का गेट चेंज हो गया। हम बैठे थे गेट पर और कई बार मैंने चेक किया कि फ्लाइट लगी नहीं है, तो मैंने मन में सोचा शायद लेट हो गई, फ्लाइट लेट भी हो जाती है, तो फ्लाइट का टाइम भी हो गया था तो भी फ्लाइट नहीं लगी, तो मैंने सोचा पूछते ही दादा, तब मैंने थोड़ा पूछने का सोचा। उसी समय मेरे पास फोन आया कि जो फ्लाइट वाले होते हैं जब टिकट बुकिंग होती है तो वो अपना नंबर भी लेते हैं, तो उन्होंने कहीं से नंबर निकाल के मुझे फोन किया कि अगर आप एयरपोर्ट पर हैं तो तुरंत आ जाइए, बोर्डिंग पूरी हो चुकी है, फ्लाइट जाने वाली है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा हम तो गेट पर ही बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि उस गेट पर नहीं, गेट चेंज हो गया, आपको पता नहीं चला। मैंने कहा कि नहीं मालूम चला, तो उन्होंने कहा तुरंत एक मिनट में आ जाओ आप। तो हम गए और वो जल्दी जल्दी में उठे ना, तो जो हमारा सामान वहां रखा था उसमें एक बैग छूट गया जिसमें बोर्डिंग पास था। वहां पहुंच गए तो उन्होंने तुरंत हमें अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन देखा तो बोर्डिंग पास ही नहीं है, फिर देखा वो बैग ही छूट गया है, तो बोला एक मिनट में जाकर के वहां से बैग लेकर आते हैं, फिर जाएंगे अंदर। कहती इतना टाइम नहीं है, वो तो गेट क्लोज हो जाएगा, आपके लिए ही एक दो मिनट ये डिले किया है उसको। तो माना ही नहीं उसने, जो क्रू बोलते हैं, क्रू मेंबर होते हैं जो एंट्री कराते हैं, तो आखिर उन्होंने हमको स्टॉप कर दिया कि नहीं आप वो बैग उठा के बोर्डिंग पास नहीं ला सकते हो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। अब फिर मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा कि बाबा ऐसे हमारी तो गलती नहीं है, हम तो एयरपोर्ट पर बैठे हैं, हमें पता ही नहीं चला, अब कैसे कलकत्ता पहुंचना है, क्योंकि जो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट थी उसका 3 घंटे का गैप था। तो मैंने कहा कैसे कलकत्ता पहुंचना है वो आप जानो, ऐसे करके मैं फिर निस्संकल्प हो गई, बाबा को कहा, और फिर अब जो भी करना है वो फिर हम सोचने लगे कि अब आगे क्या करना है। तो जैसे ही हम जाने लगे वहां से, फिर वो तो बैग तो उठा लिया वहां से, तो उसने हमें आवाज लगाई, बहन ने, उसने कहा कि अभी आप नहीं जाओ, आप यहां रुको। मैंने कहा कि हम देखेंगे ना अब नेक्स्ट फ्लाइट जो भी है हमें, क्योंकि अगर हमें कलकत्ता की जो फ्लाइट मिल जाएगी, क्योंकि हमारा सामान भी चला गया, तो सामान भी हमें वो फ्लाइट जो है वो वहां छोड़ेगी, तो हमें सामान भी लेना है फिर, तो अब जो भी हमें तुरंत नेक्स्ट मिलेगी वो बुकिंग करानी। तो उसने कहा नहीं नहीं आप रुको, मैं देखती हूं। तो हमने सोचा पता नहीं ये क्या करेगी, फिर हमें ऑफिस में लेके गई वो, तो उसने मुझे कहा कि आप आधा घंटा यहीं रहो, यहां से कहीं नहीं जाना है आपको। तो मैंने कहा आप बुकिंग करा के दोगे हमको? हम मेरे हिसाब से तो वो फ्लाइट चली गई, क्योंकि वो तो वहां से तो निकल ही चुकी थी। तो उसने कहा कि अब अभी आप जस्ट वेट करो, अभी मैं कुछ नहीं कहती हूं। फिर उसने क्या किया, उनके आपस में बातचीत हुई होगी, तो तुरंत फिर उसने, आधा घंटा भी नहीं हुआ, 15 मिनट में ही आई और कहा मेरे साथ चलो। हम गए उनके साथ और उसने तुरंत हमारा दोबारा सिक्योरिटी चेक कराया, निकाला हमको वहां से और फिर गेट से लेकर के गई। तो बताया कुछ भी नहीं कि क्या हो रहा है, मुझे भी कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। हमने कहा ठीक है ये कुछ प्रबंध कर रही है, तो देखा वही फ्लाइट जो चली गई थी हमको छोड़ करके वो वापस आई थी और उस फ्लाइट में हम बैठे, जहां एक मिनट का टाइम नहीं दे रहे थे घुसने के लिए, आधा घंटा वो लेट हो गई हमारे कारण, और फिर हम उसी फ्लाइट में बैठ के गए। तो जस्ट बाबा के ऊपर छोड़ा कि बाबा आप जानो क्या करना है। तो मैंने ये देखा कि बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देता है। शिव बाबा तो निराकार है, वो खुद तो आने वाला नहीं है, बाबा किसको टच करता है ना। इस पर एक बहुत अच्छी कहानी भी आती है कि एक बार एक गांव में एक भक्त रहता था, तो उस गांव में बाढ़ आने की संभावना थी, तो जैसे मौसम विभाग पहले से अनाउंस करता है कि बाढ़ आने वाली है तो सब अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, तो उसने भी सुना और बहुत गांव वाले थे वो तो सब चले गए, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि भक्त था, तो भगवान पर निश्चय था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, बाढ़ आ गई तो वो अपनी मंजिल पर, दूसरी मंजिल थी उस पर चला गया। फिर पानी बढ़ने लगा तो नाव चलने लगी गांव में, कि अगर कोई रह भी गया है तो उसको ले जाया जाए। तो वो एक ही था बस, तो नाव वाले ने उसको कहा आ जाओ, पानी बढ़ रहा है, कह नहीं सकते कितना बढ़ जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं ना, भगवान मेरी रक्षा करेगा, तुम जाओ। नहीं माना। फिर कुछ समय के बाद एक हेलीकॉप्टर भी चक्कर लगाने आया कि कोई छत वत पर है तो नहीं, है तो उसको ले लेते हैं। तो वो ही दिखा छत पर, तो हेलीकॉप्टर वाले ने भी रस्सी फेंकी, बोला पकड़कर आ जाओ क्योंकि पानी बढ़ रहा है, कभी भी खतरा हो सकता है। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, भगवान है मेरा, मेरी रक्षा करेगा। आखिर क्या हुआ, वो डूब गया। पहुंचा भगवान के पास, तुरंत शिकायत की, इतना मुझे आप पर निश्चय, इतना विश्वास, और फिर भी मैं बाढ़ के पानी में डूब गया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, जो पहले से सावधानी दी वो किसने दिलवाई, नाव वाले को किसने भेजा, हेलीकॉप्टर वाले को किसने भेजा, तो तुम समझ ही नहीं पाए। तो बाबा की मदद हमें कैसे मिलती है वो हमें समझने की जरूरत है। पर किसी ना किसी रूप में अगर हम सचमुच समर्पित बुद्धि हैं और पूरी तरह से, फिर अगर हम क्यों क्या में व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, तो फिर वो मदद इतनी हमें अनुभव नहीं होगी, या किसी दूसरे को सहारा बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान कहाँ मदद करेगा, क्योंकि उस समय हमें इंसान बहुत आसानी से नजर आते हैं, तो जो भी हमारे करीबी होते हैं उनका हम सहयोग लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर बाबा भी सोचता है कि ठीक है इनका दूसरा सहारा है, फिर वो किनारा हो जाता है। लेकिन बाबा पर छोड़ा पूरी तरह से निश्चय रख करके, तो हम महसूस करते हैं कि कैसे बाबा कमाल करते हैं। एक अभी हम रशिया गए थे थोड़े समय पहले, तो वहां बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि जब सेवाएं शुरू हुई, तो वो कम्युनिस्ट कंट्री है रशिया जो है, तो कम्युनिस्ट लोग भगवान को तो मानते ही नहीं है, गवर्नमेंट तो वहां अलाउ भी नहीं करती, वहां जो पहले से चर्च वगैरह थे वो सब भी हटा करके उन्होंने ऑफिसर्स बना दिए उसको। और वहां पर वो सेवा स्थापित करना शुरू शुरू के समय की बात है, तो वो बहन को कुछ महीने ही हुए थे वहां सेवा करते हुए, लेकिन देखा कि भाई बहनों को बहुत अंदर में जैसे भगवान के प्रति भावना भी है और चाहते भी हैं वो कि कोई हमें वो शांति का अनुभव कराए और वो हमें आध्यात्मिकता का जो जीवन है, जो श्रेष्ठ जीवन होता है वो हम अनुभव करें। तो बहुत भाई बहने वो क्लास करने के लिए आ रहे थे, लेकिन गुप्त रूप से करते थे वो, तो स्थान नहीं था क्योंकि उन्होंने एक स्थान किराए पर लिया था, तो कमरा छोटा सा था, फ्लैट अपार्टमेंट जैसे लेते हैं, तो दो कमरे का अपार्टमेंट था, एक कमरे में रहते थे एक कमरे में क्लास चलती थी। अब उसमें मुश्किल से 20-25 भाई बहने बैठ पाते थे और आने वाले जो थे वो 100 तक हो रहे थे, तो हॉल की जरूरत थी समझो ऐसे। तो एक भाई जो आया था दूसरे दिन, जब उन्होंने वहां सेवा शुरू की दूसरे दिन आया, वो रशियन भी जानता था और इंग्लिश भी जानता था, तो वो ट्रांसलेट करता था जो भी वो बहन भी रशियन जानती थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी तो वो उस भाई को यूज करती थी। तो उसने उन भाई को बोला कि आप जो पास में एक स्कूल, उसने देखा कि पास में जहां हम रहते हैं वहां एक स्कूल है, और उन दिनों छुट्टियों के दिन चल रहे थे बच्चों के, तो बोला जो पास में स्कूल है वहां जाकर के पूछो कि उनका हॉल हमें देंगे वो क्लास के लिए। तो वो भाई ने कहा कि अब इतना निश्चय तो नहीं था क्योंकि नई नई सेवा शुरू हुई थी, तो वो भाई ने सोचा ये बहन क्या कहती है, वो स्कूल वाले क्यों फ्री में हॉल देंगे, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने सोचा ही नहीं अपने देश में, तो कि ये इसको समझ नहीं है इस बात की। लेकिन जब बहन ने 2-3 बार बोला तो सोचा कि बहन बोल रही है तो चलो पूछ लेता हूं एक बार जाकर के, पूछने में क्या हर्ज है। तो अपने साथ एक दो को और ले गया और वहां जाकर जो बोला स्कूल में सिर्फ एक ही था, मैंने जो वहां क्या मेन था वही उसको मिला वहां पर। उसका डायरेक्टर थी या प्रिंसिपल थी, जो भी थी, एक बहन थी वहां पर, तो वो थी वहां। और जब उन्होंने उससे बात की तो वो कुछ स्ट्रेस में थी, जैसे डिप्रेशन में लोग होते हैं, कुछ इस तरह का उसका चल रहा था टाइम। तो जैसे ही उसने इन लोगों को देखा, इनसे मिली, तो उसको बहुत शांति का अनुभव हुआ। उसको लगा कि अगर ये लोग मेरे स्कूल में आएंगे, जैसे उन्होंने क्लास की बात की कि हमें हॉल चाहिए क्लास के लिए, तो उसने सोचा कि ये लोग मेरे स्कूल में आएंगे और कुछ ऐसा स्पिरिचुअल ज्ञान की बात करेंगे तो शायद मेरा स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। तो उसने मान लिया कि आप आ जाओ हमारे स्कूल में और क्लास करो। तो बोला वो पूरा 2 महीना फ्री हॉल हमें मिल गया। तो मतलब ऐसे देश में भी जहां बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि कोई फ्री में एक इंच जगह भी दे दे, वहां उनको देखो बाबा ने उस आत्मा को टच किया और उन्हें वो हॉल सेवा के लिए मिल गया। और उसके बाद से ही फिर वो सुनाती हैं कि उन्होंने सुनाया कि एक मुरली में मैंने भाई बहनों को मुरली के भी समीप लाया ताकि बाबा से वो डायरेक्ट संबंध का अनुभव कर पाए, क्योंकि मुरली सुनते हैं तो फील होता है कि डायरेक्ट बाबा हमसे बात कर रहे हैं। तो भले ही वहां इतनी जल्दी वो कोर्स नहीं समझ पाते हैं, बता रहे थे कि 40 दिन लगते हैं वहां कोर्स कराने में, हमारे यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, वहां उनको मुरली तक लाने में उनको 40 दिन लगते हैं। लेकिन जब मुरली सुनाना शुरू किया तो मुरली में एक दिन बाबा ने बोला कि अगर सेवा के लिए मकान चाहिए तो मेयर के पास जाओ। तो वो एक जो बहन थी, एक माता थी वहां, वो मुरली सुन करके जैसे बाबा ने कहा है तो इतना निश्चय उसको कि बाबा ने कहा है तो हमें मेयर के पास जाना चाहिए, हमें सेवा करने में दिक्कत आती है तो हमें सेवा के लिए मकान चाहिए। तो वो बहन को बिना बताए मेयर के पास चली गई। अब मेयर तो गवर्नमेंट होती है, और उस समय उनको तब तक 2 साल हो गए थे और रशियन जो कम्युनिस्ट था वो टूट करके, जो सोवियत यूनियन था वो टूट करके वो रशिया हो गया था, 9 देश हो गए थे। तो अब उनका जो सारा गवर्नमेंट के कानून थे वो बदल रहे थे, तो काफी चेंज हो रहा था वो रशिया के अंदर। तो जब वो गई मेयर के पास और कहा कि हमारे यहाँ एक क्लास चलती है, और बताया कि हम इतने इतने स्टूडेंट हैं और हमें मकान चाहिए, क्लास के लिए मकान चाहिए, तो मेयर ने कहा कि मकान तो हम नहीं दे सकते क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, लेकिन हम जमीन दे सकते हैं। तो जो भी आपके मुख्य हैं जो क्लास कराते हैं उनको लेकर के आओ, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कैसे हो सकता है। तो उसने जाकर के बहन को सुनाया कि मैं तो मेयर के पास चली गई आज। तो बहन बड़ा आश्चर्य खाने लगी, मेयर के पास चली गई, हमने गवर्नमेंट तक छुपा करके सेवा की आज तक कि गवर्नमेंट को पता ना चले कि हम यहाँ सेवा कर रहे हैं सीधा। तो उसने उसको बोला तुम मेयर के पास क्यों चले गई? उसने कहा बाबा ने कहा ना मुरली में। उसने कहा आप चली गई तो फिर बोला बुलाया है आपको? तो बोला मैं अंदर से इतना डरूं कि वो मेयर कुछ पूछेगा, कुछ इंक्वायरी करेगा, अगर कोई बात सामने आ गई तो जो थोड़ी बहुत सेवा हम कर रहे हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने कहा चलो मिल लेते हैं, अभी ये गई है, बाबा ने कहा है। तो गई बहन वहां, संतोष बहन है अपने जो वहां सेवा करते हैं, तो वो कहती है मैं गई मेयर के पास। तो मेयर ने बहुत अच्छे से मेरे से सारी जानकारी ली, और फिर वो जिस तरह से सुनाते हैं ऐसे देशों में, उन्होंने भी बताया कि हम किस पर्पस के लिए यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो सोशल सर्विस कर रहे हैं, यहाँ की सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, तो जरूर हम मकान तो नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे पावर में नहीं है अभी, लेकिन हम जमीन दे सकते हैं, तो हम आपको जमीन दे देंगे और उसने तो उसने मन में सोचा, जैसे उसने कहा जमीन दे देंगे, तो मैंने सोचा हम जमीन का क्या करेंगे, क्योंकि मकान बनाना तो बहुत महंगा पड़ेगा, हमें तो मकान चाहिए। तो बोला अभी मैं बोल भी नहीं पाई उसको पूरी बात, और उसने तुरंत अपनी वो कार्यवाही शुरू कर दी। जो भी जिन भी ऑफिसर्स को उसे जो जो कहना था, तो मैं चुप रह गई, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। और कुछ दिनों के बाद उसने मुझे आने के लिए कहा, और जब मैं गई तो 1 हेक्टेयर जमीन, माना काफी अच्छी जमीन होती है, वहीं पर अभी अपना सेंटर बना हुआ है, वहां सेंट पीटर्सबर्ग वो स्थान है, तो वो इतनी बड़ी जमीन उसने साइन करके फ्री में दे दी वहां। तो देखिए बाबा ने बोला और उन्होंने किया और वो कार्य हो गया। तो कैसे बाबा कार्य करता है अपना, और वो भी ऐसे देश में। तो ऐसे ऐसे उन्होंने किसे सुना है कि कैसे असंभव चीजें संभव हो जाती हैं बाबा की मदद से। तो बाबा से तो हमारे सर्व संबंध है, वो हमारा मात पिता है, शिक्षक है, गुरु है, साथी है, दोस्त है, साजन है, बच्चा भी है। तो मात पिता के रूप में हम बाबा की पालना का अनुभव करते हैं। भक्ति में मानते थे कि भगवान पालनहार हैं, लेकिन सचमुच वो कैसे हमारी पालना करता है हम बाबा के बच्चे संगम युग पर अनुभव करते हैं। जन्म लेते ही बाबा के सर्व खजानों के वारिस बाबा हमें बना देता है। सर्व खजानों के मालिक हैं, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हैं, और फिर केवल वर्तमान में नहीं, आने वाले 21 जन्मों तक बाबा हमें गारंटी देते हैं। और अगर बाबा हमारे साथ है तो जैसे बच्चे माँ बाप के साथ निश्चिंत होते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी माँ बाप की है, बिल्कुल निर्भय होते हैं, ऐसे ही जब बाबा को हम अपने साथ अनुभव करते हैं तो फिर हम भी निश्चिंत होते हैं, हमारे अंदर भी वो हिम्मत होती है। और वो जैसे कष्ट के समय हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को ही कहते हैं, सबसे जो विश्वास का संबंध होता है इस दुनिया में वो माता पिता और बच्चों का संबंध होता है। तो जैसे ही वो माँ बाप को कहेंगे, तुरंत माँ बाप अपने का भी त्याग करके बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उनको कितना भी त्याग करना पड़े। तो हम भी ऐसा अनुभव करते हैं कि बाबा हमें, जैसे अभी सुना कि कैसे बाबा की मदद हमें हर स्थिति में मिलती है। तो उसके ऊपर भी एक बड़ी अच्छी एक भक्त की कहानी आती है कि एक बार एक भक्त ने सपना देखा, और सपने में उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे चल रहा है, और किनारे पर पैरों के निशान है। तो उसने देखा कहीं 4 पैरों के निशान है और कहीं 2 पैरों के निशान है। फिर उसने ध्यान से देखा कि जहां 4 पैरों के निशान है वो उसके सुख भरे दिन थे, और जहां 2 पैरों के निशान है वो उसके कष्ट भरे दिन थे। तो देखा कि ये जो 4 पैरों के निशान है उसमें 2 निशान भगवान के हैं और 2 मेरे हैं। तो उसे बहुत खुशी हुई कि भगवान मेरे साथ चल रहे थे। फिर देखा कि जहां 2 पैरों के निशान है तो उसे लगा 2 पैरों के निशान और मेरे दुख भरे दिन, तो भगवान कहां चले गए। तो उसने शिकायत की कि भगवान मेरे सुख के दिनों में तो आप मेरे साथ चल रहे हो और मेरे दुख भरे दिन में आप कहां हो, सिर्फ मेरे ही पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो भगवान ने उसे कहा कि जो तुम 2 निशान देख रहे हो, तुम्हारे सुख भरे दिन में मैं तुम्हारे साथ था वो तो तुमने सही देखा, लेकिन ये जो 2 पैरों के निशान हैं, ये निशान किसके हैं? ये निशान तुम्हारे नहीं, मेरे पैरों के हैं। तो तुम्हारे दुख भरे दिनों में मैं तुम्हें चलने का कष्ट भी नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें गोदी में उठा लिया, तो सिर्फ 2 पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो हम भी महसूस करते हैं कि जब विघ्न आते हैं, अब ब्राह्मण बने हैं तो विघ्न नहीं आते हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि जब बाबा पर निश्चय है तो हम इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति अपने अंदर पाते हैं, चाहे वो सहन शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, विघन हमें विघन लगता ही नहीं है। कैसे मक्खन से बाल के रूप में हमने उसे पार कर लिया। हाँ, उस नशे और खुशी में देखो, जब बाबा के बनते हैं तो कितने विघन शुरू हो जाते हैं, पर लगता है वो विघन विघन है। हाँ, कोई कुछ कहता है, कोई होते हैं ना लोक लाज मर्यादा के, जो परिवार में गृहस्थी में रहते हैं, खान पान का नियम शुरू करेंगे तो भी कुछ लोग कुछ कुछ बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, या जब पवित्रता की बात आती है तभी भी कितने विघ्न आ जाते हैं। और भी जो भी हम जिस समाज में रहते हैं और जब हम बाबा की श्रीमत का पूरी तरह से पालन करने लगते हैं तो, लेकिन बाबा की मदद ऐसी होती है कि दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, वो बाबा की शक्ति, वो बाबा की मदद होती है हमारे लिए। तो मात पिता की पालना का विशेष अनुभव हम अमृत वेले कर सकते हैं। अमृत वेले जो बाबा अपनी सर्व गुण है, सर्व शक्तियां हैं, वो हमें भरते हैं और फिर सारा दिन वो सहयोग हमें बाबा का मिलता रहता है। ऐसे ही वो हमारे शिक्षक हैं, परम शिक्षक हैं, सत शिक्षक हैं। बाबा ज्ञान का सागर है तो हमें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने दिया है। त्रिलोकी नाथ त्रिकाल दर्शी बाबा ने हमें बनाया है। तो दुनिया में भी किसी का कोई शिक्षक बहुत ऊंचा होता है ना, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यानी जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है उसमें कोई पढ़ता है और पढ़ाने वाले भी कोई ऐसे नामी ग्रामी होते हैं, तो उनको भी बहुत नशा होता है ना कि हम हार्वर्ड में पढ़ते हैं, हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं या हम कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं और हमारे पढ़ाने वाले कौन है, तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। स्वयं भगवान ने जो स्थापन की है उस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, भले पढ़ने वाले हम साधारण हैं, लेकिन कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी है और शिक्षक पढ़ाने वाला कौन, जो सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम सब ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उससे पढ़ाई में, टीचर के आने से पहले आना चाहिए, माना पंचुअल होना चाहिए। हाँ, और होमवर्क पूरा करना चाहिए, बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म में होना चाहिए ये भी सही है। हाँ, टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो रेगुलर पढ़ाई में, रेगुलर पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए, पंचुअल तो है ही है, फिर फॉलो भी करना चाहिए। यानी एक तो हम थ्योरी पढ़ते हैं, बाबा ने ये कहा, बहुत अच्छा कहा, सुनकर हम खुश होते हैं ना, एक होता है ज्ञान को सुनना, सुनकर खुश होना, और दूसरा होता है ज्ञान को समाना। तो कितना हमने उसे धारण किया। अब जैसे बाबा हमें सत्य की बात कहते हैं, सच्चाई सफाई से हमें रहना चाहिए, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं हैं। अपने को आत्मा समझकर आत्मिक दृष्टिवृत्ति से आपस में व्यवहार में आओ, तो मानो जैसे सच्चाई सफाई की ही बात है। तो दिन भर अगर आज की मुरली में ऐसी पॉइंट आई, आज की मुरली की विशेष पॉइंट क्या थी, आत्मा समझने का, ये तो हर मुरली में बाबा कहता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे पहले हम ये सीखते हैं पाठ तो सबसे ज्यादा भूलते भी इसी पाठ को हैं। तो बाबा किसी मुरली में ये ना कहे कि अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, ऐसा नहीं है। आशीर्वाद, आशीर्वाद की बात बाबा ने आज कही थी, तो हम जब गुरु की बात करेंगे तब आशीर्वाद की भी बात करेंगे कि बाबा की आशीर्वाद, बाबा ने कहा जो मदद बाबा करता है वो ही आशीर्वाद है, कोई अलग से आशीर्वाद की बात नहीं है, है ना। तो मतलब अगर हम सच्चाई सफाई की बात करते हैं तो फिर अंदर बाहर हम एक जैसे हैं और हमारे जो संबंध हैं बाबा से तो सच्चे हैं ही हैं, लेकिन आपस में संबंध में भी व्यवहार में आते हैं तो भी अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा व्यवहार तो हमारा नहीं है। तो वो धारणा हमारे जीवन में हो। कई बार हम उसे युक्ति कह करके थोड़ा चतुराई से चलते हैं ना, आज का युक्ति से मुक्ति मिलती है, ऐसे भी कहते हैं। ब्राह्मण थोड़ा फिर उसमें चतुराई करते हैं कि जहां अपने को बचाना है थोड़ा झूठ का सहारा ले लेते हैं। ये तो युक्ति है। उसमें बाबा ये कहता है कि कल्याण के लिए, एक होता है स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, एक होता है कल्याण के लिए। कल्याण के लिए माना आपको सेंटर आना है, आपके परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते, या आपको मधुबन आना है, आपके परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते। अब अगर आपने उनसे छुट्टी ली तो छुट्टी तो नहीं मिलने वाली है, और अगर सच भी बता दिया तो घर में अशांति हो जाएगी, माना स्थिति बिगड़ सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप ये कह देते हैं कि मैं कहीं और जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, और जाते कहाँ हैं आप, सेंटर पर। तो इसको बाबा फिर झूठ नहीं कहता है, ये हम अपने कल्याण के लिए यानी आत्मिक उन्नति के लिए हमने उसे एक सहारा बनाया। लेकिन अगर अपने स्वास्थ्य के लिए हम झूठ बोलते हैं तो फिर वो पाप ही, जैसे बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है। तो एक बार ऐसे ही एक चोर था, वो गांव से गुजर रहा था तो सत्संग चल रहा था। तो सत्संग में जो गुरु सत्संग करा रहे थे वो सत्य की बहुत महिमा सुना रहे थे, तो उसको बड़ा अच्छा लगा वो सुनकर के कि अच्छा सत्य की इतनी महिमा है, तो मैं एक दिन कोशिश करता हूँ सच बोलने की। उसने ये भी कहा कि जो सच बोलता है भगवान उसके साथ होते हैं। तो उसने कहा एक दिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो उस दिन उसने राजमहल में चोरी करने का प्लान बनाया हुआ था, तो वो गया राजमहल में चोरी करने। तो जैसे ही अंदर घुसने लगा, जब उसने सोचा झूठ बोलना ही नहीं है तो चलो सामने से ही घुसते हैं, तो सामने से घुसा तो द्वारपाल ने रोका, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा चोरी करने जा रहा हूँ। तो जैसे आप हंसे ऐसे उसको भी हंसी आ गई कि कोई चोरी करने जाएगा तो सीधा थोड़ी बोलेगा कि चोरी करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ये मजाक कर रहा है, कोई काम से आया होगा। तो उसने उसको जाने दिया। फिर वो खजाने तक पहुंच गया, किसी ने नहीं रोका उसको, खजाने तक पहुंच गया। फिर खजाना खोला, उसको जितना निकालना था निकालना, उसने गठरी बनाई, और जब वापस लेकर के आ रहा था तो एक दो लोगों ने टोका, तो उसने कहा चोरी का माल लेके जा रहा हूं। तो भी किसी ने विश्वास नहीं किया कि कौन बोलेगा कि मैं, और बाद में देखा सचमुच खजाने में चोरी हो गई है। तो बोला वो तो झूठ नहीं बोला, वो सच बोला था, चोर था वो, आया चोरी करके ले गया। तो राजा तक खबर पहुंची कि एक चोर बोल करके चोरी करके खजाने। तो उसको ढूंढवाया गया, तो ज्यादा दूर नहीं गया था, वो पकड़ में आ गया। तो जब पकड़ा गया, राजा के सामने उसे लाया गया, तो राजा ने उसको पूछा तुमने चोरी किया? उस दिन उसने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मुझे सच ही बोलना है। उसने कहा हाँ महाराज चोरी की। उसने कहा तुमने बोला भी सही कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ? तो बोला हाँ बोला भी सही। तो उसने कहा कि इतनी हिम्मत कैसे, तुम चोरी करने जा रहे हो और बोलकर जाते हो? तो उसने कहा महाराज, फिर उसने सारी घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे मैंने सत्संग में सुना और मैं उससे प्रभावित हुआ, तो मैंने सोचा एक दिन मैं जरूर सच बोल के देखता हूँ, तो ये सच बोलने का परिणाम है। तो उसने कहा कि अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की और तुमने चोरी का धन भी लौटा दिया है तो तुमको कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमको राजमहल में नौकरी दे दी जाए तो क्या तुम चोरी करना बंद कर दोगे? तो उसने कहा क्यों नहीं, हाँ मैं चोरी तो करता ही इसलिए हूँ कि मेरा मेरे परिवार का गुजारा सही चलता रहे, तो अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं कमा सकूंगा तो फिर मैं क्यों चोरी करूंगा। तो राजा ने उसको राजमहल में नौकरी दे दी। तो उसने कहा कि सचमुच उसने सही कहा था, सच बोला तो राजमहल में नौकरी मिल गई। तो जो सच के परिणाम होते हैं वो हमेशा ही अच्छे ही होते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। तो कोई भी बाबा की जो शिक्षा हमें मिली उसे हमने अपने जीवन में कितना लाया, उसका महत्व है, कितना हम स्वरूप बने उसके। और इसीलिए हमारी दादियां, हम बड़ी दादी को देखते थे, दादी चार बार मुरली पढ़ती थी दिन में। दादी प्रकाशमणि जो थे उनके साथ, उनके नजदीक उनके समीप रहने का ड्रामा ने हमें अवसर दिया, तो हमने बहुत उनको देखा मुरली का कितना महत्व था उनके जीवन में, और बाबा कहते हैं जिसको मुरली से प्यार है उसको ही मुरलीधर से प्यार है। जानकी दादी कहते हैं मैं एक साल देरी से आई, मैंने बाबा से पूछा बाबा मैं लेट आई हूँ। हाँ, अभी आने वाले भाई बहन कहते हैं कि हम लेट आए हैं तो फास्ट कैसे जाएं, तो दादी कहती वही सवाल मैंने बाबा से उस समय पूछा था कि बाबा मैं लेट आई हूँ फास्ट कैसे जा सकती हूँ। बाबा हमेशा कहता था अगली दिवाली नहीं आएगी, किसी कभी भी नहीं पता था कि विनाश कब होने वाला है, हमेशा ही ऐसा रहा कि कभी भी विनाश हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि तुम रोज 6 बार मुरली पढ़ो, तो दादी ने कहा मैं 6 बार नहीं बाबा 12 बार पढ़ूंगी। तो दादी ने वो मेहनत की और सचमुच दादी ने वो गैलप किया, तो बाबा की मुरली को हम एक बार से सुने नहीं लेकिन बार बार जब भी हमें मौका मिलता है उसको हम रिवाइज करें, उसको विचार सागर मंथन करें, तभी वो हमारे अंदर धारणा में आएगी। फिर जो गुरु का संबंध है, ऐसे जो गुरु का संबंध होता है दुनिया में लोग गुरु करते हैं कि गुरु हमें भगवान तक पहुंचाएंगे, वही हमें सद्गति का मार्ग बताएंगे, वही हमें मुक्ति मोक्ष दिलवाएंगे, लेकिन हमें तो स्वयं ही सद्गुरु जो गुरुओं का गुरु है वो मिल ही चुका है। तो हमें वो बात नहीं है, लेकिन दुनिया में लोग गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए भी जाते हैं कि गुरु मेरे सिर पर हाथ रख दे और अगर सिर पर हाथ रख देगा तो मेरी सब चीजें आसान हो जाएंगी, मुश्किल को आसान करने के लिए, या कोई उनके जीवन में कमी है बेटा नहीं है तो गुरु आशीर्वाद कर दे बेटा हो जाएगा, कोई रोगी है गुरु आशीर्वाद कर दे तो इसका रोग दूर हो जाएगा, वो निरोगी हो जाएगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो बाबा कहता है ये सारे वरदान जो लोग गुरुओं से मांगने जाते हैं ये बाबा ने आपको दिए हैं, आयुष्मान भव, निरोगी भव, धनवान भव, पुत्रवान भव जैसे वो कहते हैं तो ये सब मिले हुए हैं, लेकिन अलौकिक रूप से। जैसे आयुष्मान भव माना इस ब्राह्मण जीवन में हमारी आयु संगम युग में लंबी हो, पूरा संगम युग जब तक है तब तक हम ब्राह्मण रहें। ब्राह्मण जीवन में छोटी आयु किसको कहेंगे, शरीर की आयु नहीं। हाँ, जो बीच में अगर बाबा को छोड़कर जाता है, जिसको बाबा कहता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं, वो छोटी आयु। और फिर आयु तो है लेकिन निरोगी भी रहे, अगर व्यक्ति बीमार रहता है तो भी उसको वो जीना जीना नहीं लगता है। तो ये जो हमारी आयु है इसमें भी हम जो भी उलझने आती हैं जीवन में, जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी विघ्न आते हैं, उनसे भी हम बहुत सहज मुक्त रहें, पार हो जाएं, उसको हम कहेंगे वो निरोगी जीवन है। फिर धनवान में बाबा ने हमें ज्ञान धन से धनवान बनाया है, और ये ज्ञान धन अविनाशी धन है और हमें पद्मा पदम पति बनाने वाला है, जन्म जन्मांतर के लिए हम सदा के लिए धनवान बन जाएंगे। और फिर पुत्रवान भव, तो बेहद का रचयिता बना दिया बाबा ने, एक दो बच्चों के माता पिता नहीं लेकिन बेहद के रचयिता माना विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं। क्या हैं? तो सभी आत्माओं के कौन हो गए सभी आत्माएं कौन हो गई हैं? तो उस रूप में सभी को, कोई एक दो को नहीं। बाबा कहता है कि जिस खड़ी बाबा के पास हमारा जन्म होता है उस खड़ी सर्व प्राप्तियां सबको एक जैसी दे देता है बाबा। ऐसे नहीं उसको एक दी उसको दो दी, वो बाद में आया इसलिए उसको कम दी, वो पहले आया इसलिए उसको ज्यादा नहीं, सबको एक जैसा वर्षा बाबा से मिलता है। लेकिन उसे लेने वाले, उसे हम कितना यूज करते हैं, उसे हम कितना बढ़ाते हैं, उसके आधार पर फिर हमारा भाग्य होता है। फिर गुरु मंत्र देता है, दुनिया में गुरु मंत्र देता है तो मना करता है किसी को मत बताना, लेकिन बाबा ने भी हमें मंत्र तो दिया है, मन मना भाव मध्याची भाव, लेकिन बाबा कहते हैं सारी दुनिया को बताओ जितना तक पहुंचा सकते हो। हाँ, कोई दुनिया की आत्मा रह ना जाए जिसे ये ना पता चले कि बाबा आया हुआ है, और बाबा को याद करने से हमें वर्षा मिलेगा। तो गुरु के प्रति जो श्रद्धा विश्वास समर्पण ये इस संबंध में चाहिए होता है वो ब्रह्मा बाबा में सबसे ज्यादा। ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन में 12 गुरु किए, बताते ना क्यों बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चुना, ऐसी कई विशेषताएं ब्रह्मा बाबा के अंदर थी। तो एक उनके जीवन कहानी में बताते हैं कि उनके पोते का जन्मदिन था और वो जन्मदिन में काफी मेहमान आने वाले थे, बहुत बड़ा प्रबंध किया हुआ था, लेकिन उसी समय गुरु का तार आया, गुरु ने बुलाया उनको। तो बाबा ने कहा कि मुझे जाना है। जसोदा माता ने कहा कि इतने मेहमान आने वाले हैं, बाबा आप जाएंगे तो कैसे होगा। तो बाबा ने कहा गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है। तो बाबा गया और हालांकि पता चला कि कोई ऐसा काम नहीं था कि जो बहुत इमरजेंसी हो और तुरंत बाबा की जरूरत हो, बाद में भी बाबा जाते तो चल सकता था, लेकिन ये बाबा की भावना थी अपने गुरु के प्रति कि वो कभी भी गुरु की बात को टालते नहीं थे। तो शिव बाबा भी हमारा जो सदगुरु हैं, कहते ना कि माता पिता के प्रति आज्ञाकारी और गुरु के प्रति फरमान बरदार, और वफादार जो है वो है साजन और सजनी के संबंध में, जो बाबा के साथ हम वो संबंध अनुभव करते हैं उसमें। बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से बोलूं, जो भी मतलब है वो एक ही है, बाबा ही संसार है। ये अनुभव जैसे दुनिया में भी अगर साजन और सजनी में किसी और के साथ संबंध होता है ना तो वो पसंद नहीं आता उनको, तो फिर उसको बेवफाई कही जाती है। तो यहां भी बाबा को भी एक बाबा से ही हमारा ये संबंध रहे, वो बाबा वफादारी कहते हैं इस संबंध में, पूरी वफादारी बाबा के साथ, और सर्व संबंध है तो है ही है। और ऐसे अगर भाइयों के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे, बहनों के लिए तो साजन का संबंध है, भाइयों के लिए साजन ही है, क्योंकि आत्मा रूप में सब सीताएं हैं, उस राम की सब सीताएं हैं, सब सजनियां हैं, आत्मा रूप में सब उसकी सजनी है, चाहे तन पुरुष का है ऐसा कहेंगे तो उस रूप में। और आशिक माशुक की भी बात करते हैं तो सबका माशुक एक बाबा है, हम सब आशिक हैं, भक्ति से ही उसके आशिक हैं, तो वो आशिक हम सबको मिला है अभी। तो फिर कहते हैं पूरे कल्प में बाबा एक बार मिले हो, कल्प में एक ही बार मिलता है ना बाबा संगम युग पर, तो सर्व संबंधों का जो हिसाब है बाबा के साथ वो हमें पूरा करना है। यानी ऐसे नहीं कि दो संबंध बाबा के साथ जोड़ लिए, बाकी दो संबंध किसी और के साथ जोड़ लिए। चलो 2 मिनट ही ट्रैफिक कंट्रोल करके, और ऐसे ही बाबा को बच्चा भी बना सकते हैं। प्रवृत्ति वालों को तो खास बाबा कहता है कि बाबा को वारिस भी बनाना है। तो जैसे मानो 2 बच्चे हैं घर में, तो एक तीसरा बच्चा कौन, शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा हमेशा पूछते थे जब बाबा मिलते थे प्रवृत्ति वालों से, तो पूछते थे आपके कितने बच्चे हैं, तो अगर वो शिव बाबा को बताना भूल जाते थे तो बाबा फेल कर देता था उनको। तो जैसे वो 2 बच्चों की जिम्मेवारी निभाते हैं, ऐसे शिव बाबा की भी उतनी ही 2 बच्चों की तरह जिम्मेवारी निभानी है। तो एक जन्म बाबा को वारिस बनाया, तो बाबा कहते हैं 21 जन्म फिर बाबा आपको वारिस बनाता है, बाबा आप पर बलिहार चाहते हैं। और बाबा का एक संबंध धर्मराज का भी है, वो फिर वो जस्टिस का संबंध है, वो अलग संबंध हो जाता है कि जो हमारे अंत समय के हिसाब किताब होते हैं वो पूरी लेन देन बाबा उससे पूरी करते हैं। तो जितने भी सर्व संबंधों का अनुभव हम सारा दिन में करते रहेंगे तो उतना ही सहज जब भी योग में बैठेंगे बाबा के लव में लीन होने का अनुभव सहज होगा। और जहां मोहब्बत है बाबा कहते हैं वहां मेहनत नहीं होती। ब्राह्मण जीवन में कभी भी नहीं लगेगा कि हम पुरुषार्थ की मेहनत करें, ऐसे लगेगा जैसे बाबा के वरदानों में पल रहे हैं और बाबा सहज ही हमें उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। माया चीत विघन चीत भी सहज हो जाएंगे और नष्ट मोहा भी सहज हो जाएंगे, क्योंकि सर्व संबंधों से कौन है मेरा जीवन का आधार, कौन है? बाबा है। बाकी ठीक है, संबंधों में सभी से स्नेह है, सभी से नाता है, जो व्यवहार है वो सबसे निभाना है, जो कर्तव्य है उसे पूरा करना है, लेकिन दिल का संबंध जो है वो एक बाबा के साथ है। और दुनिया में कहते हैं अगर किसी संबंध की कमी होती है तो वो फील होता है उनको, और बुद्धि उस संबंध में फिर जाती भी है। तो बाबा ये कहता है कि अगर अगर कोई संबंध बाबा से अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरी आत्मा उस संबंध से आपको खींच लेगी। कई बार लोग ये भी सोचते हैं बाबा तो निराकार हैं, तो दिल का हाल सुनने वाला कोई एक तो चाहिए, सहेली या सखी या जो भी अपने जो भी संबंधी होते हैं। तो अगर एक को भी बनाया तो बाबा साइड हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी उलझन की बात आती है, पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा याद आना चाहिए। अगर आत्मा याद आएगी तो आत्मा के साथ कर्म का हिसाब किताब बनेगा, और अभी हमको कर्मातीत बनना है, कर्म के हिसाब किताब को नहीं बढ़ाना है। इसलिए बाबा कहता है कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए। और ऐसा नहीं है कि बाबा सुनता नहीं है, जो भी हम कहते हैं बाबा तक पहुंच जाता है, तो हमें वो मदद वो शक्ति बाबा की मिल ही जाती है। और नहीं तो कोई ना कोई अनुभव हमें ऐसा होता है या कोई ना कोई सीख हमें ऐसी मिलती है जो आगे हमें पुरुषार्थ के लिए मदद करती है। तो सर्व संबंधों का अनुभव रात को सोते तक, बाबा तो हमारे लिए कभी भी हाजिर हो सकते हैं, इंसान तो फिर भी नहीं हो पाएगा, कभी हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा। बाबा को तो जब कहेंगे मेरा बाबा आ जाओ, हाँ कहते ना, तो योग निद्रा की भी बात करते हैं कि सोते समय भी बाबा की याद की गोदी में सो गए तो जो नींद भी होगी वो योग निद्रा होगी। ममा बाबा की जो नींद थी वो भी योग में आती थी, कि वो बाबा की याद में सोते हैं तो वो भी हमारी कमाई होती है, जिसे हम योग निद्रा कहते हैं। तो पूरा ही 24 घंटे बाबा से संबंध निभाने की प्रवृत्ति हमारी चल सकती है और हम निरंतर योगी सहज बन जाते हैं। तो संबंध हमें सहज योगी भी बनाते हैं और निरंतर योगी भी बनाते हैं। ओम शांति।
प्रभु आपके यो तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यो तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य शिव है सुंदर है, सत पर प्यार निरंतर है, साच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी हो न रहे भी रहे, पर दिल से सच्चा साफ रहे, निर्मल मन और निश्चल वाणी प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपकी यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य शिव है सुंदर है, सत पर प्यार निरंतर है, साच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यू तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपकी यू तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति।